Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ye karma hame bhulave mein le jate hain. Aur bahut bade karma ki zarurat bhi nahi, bahut chote chote karma. वो पंडित जी ठीक बोलते थे, एक छोटा सा फूल भी हमें अनंत जन्मों में ले जा सकता है, क्योंकि वो छोटा सा फूल भी हमें आत्मा से दूर कर देता है, वो बहिर्मुख बना देता है, हमारी चेतना उसी के आसपास हो जाती है। लेकिन जो इन कर्मों का भी दृष्टा है, जो कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता है, आपकी तो दृष्टि भाव में, मैंने आपको एक दिन बोला था, प्रमाता और साक्षी कहीं और नहीं है, इसी के अंदर है। ये साक्षी ही परमात्मा है और प्रमाता ही जीव है। आपके अंदर जो ईश्वर तत्व है, जो माया से प्रभावित नहीं होता है, माया बिंबो वशीकृत्य तांस्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। पंचदशिकार कहते हैं कि जो माया में आबद्ध है लेकिन माया के वश में नहीं है, जो माया के कारण जरूर है लेकिन माया जिसके वश में है, माया के वश में नहीं है, वही ईश्वर है। और वही तत्व हमारे भीतर, वही तत्व हमारे भीतर भी है, लेकिन उस तत्व को हम पहचान ही नहीं पाते। वही तो साक्षी है, अभिचाकसीति, वही तो परमात्मा भाव है। साक्षी भाव परमात्मा का भाव है और वो केवल देखने का भाव है, आबद्ध होने का भाव नहीं है, जुड़ने का भाव नहीं है, अलग होके देखने का भाव है। और जो प्राणों का भी साक्षी है, जो प्राण तत्व का भी साक्षी है, उसको जानने के बाद ततो न विजुगुप्सते, उसको जानने के बाद ज्ञानी पुरुष किसी से घृणा नहीं करता है। ये बात बड़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ततो न विजुगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करता है वो ज्ञानी। और हमारे जीवन में यही चीज महत्व की है, हम तत्व को कितना जान रहे हैं, हम तत्व के कितने निकट हैं, उस आत्म तत्व को जानने की योग्यता हमारे में कितनी पैदा हो रही है, इसका ये लक्षण भी है, आत्मज्ञान का प्रयोजन भी है और ये आत्मज्ञान का लक्षण भी है। भाष्यकार ने कहा ये आत्मज्ञानी के जो लक्षण हैं, ये साधक के जीवन के उद्देश्य हैं, साधक के जीवन का ये साध्य है। आप ज्ञानी के बारे में आप श्रवण करते हैं, ततो न विजुगुप्सते, ज्ञानी किसी से घृणा नहीं करता है, तो आपने जाना, आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको इन गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना है। हम भी किसी से घृणा न करें, किसी से राग द्वेष न करें, कर्तव्य रूप से सारे कर्म करें। आपको जो ड्यूटी मिली है, आपको जो कर्म मिले हैं, वो आपको करते जाना है, लेकिन कहीं पर भी आसक्त नहीं होना है, कहीं राग नहीं, न द्वेष, न कहीं घृणा, आपको कर्म करते जाना है। और ये धीरे धीरे ये हमारे जीवन में अधिकार को पैदा कर आत्मज्ञान की ओर ले जाने के प्रति कारण बन जाती है। ये सारी बातें एतत् वैतत्, यही आत्मा है, यही परमात्मा। जब बालक नचिकेता ने कहा था यत् पश्यसि तद् वद, जो आत्मसत्ता को अपने जीवन में देखते हैं वो आप मेरे को कहो, जिसको आप देखते हैं वो कहो, जो आप सुनते हैं वो नहीं। बालक नचिकेता ने बहुत गहरी बात बोली थी, जो आप देखते हैं वो कहिए, आप जो सुनते हैं वो मत कहिए। माने आप जिसका अनुभव करते हैं, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, आप सुनी सुनाई बात हमको सुनाएं, तो सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुनी है। आप सुनी सुनाई बातें सुनना नहीं चाहते, हम देखी बातें आपके जीवन का अनुभव सुनना चाहते हैं। आचार्य यम ने कहा वही है, यही तत्व है जो साक्षी हैं। या प्राणेन संभवती आदित्य देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेर भूतेभिर व्यजायत एतत् वैतत्। जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, जिस प्राण शक्ति के कारण संपूर्ण इंद्रियां चलती हैं, ये संपूर्ण शरीर चलता है। प्राण शक्ति हमारे शरीर में है, समष्टि प्राण इस दुनिया को चलाता है और व्यष्टि प्राण इस शरीर को चलाते हैं। एक बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर आख्यायिका है प्राण शक्ति के ऊपर। हमारे इंद्रियों में एक बार झगड़ा हो गया, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्तांकार आपस में झगड़ा करने लगे। ये आख्यायिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। यह हमारे शास्त्र की विशेषता है, किसी बात को कहानी के द्वारा कहना। आप इसको इतिहास मत समझ लीजिए। एक बार झगड़ा शुरू हो गया, हम सब में श्रेष्ठ कौन है? आंख ने कहा सबसे श्रेष्ठ तो हम हैं, हम रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान हमें होता है, बहुत सारी चीजों का संकलन होता है, आजीविका की चीजें जुटा लेते हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी कर लेते हैं। इसलिए आंखों ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ तो हम हैं, कानों ने कहा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कान न हो तो आप सुन नहीं पाएंगे, मार्ग का ज्ञान आपको नहीं होगा। हमारे पास जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का 90% हिस्सा तो कानों से आया हुआ है। बहुत सारी चीजें तो आप कानून से सुनते हैं, आपको अक्षर ज्ञान हुआ कानून से, आपको टीचरों ने पढ़ाया कानून से, ये सारा जो आपके पास ज्ञान है, शिक्षित होने का भाव, ये कानून के माध्यम से है। संपूर्ण शास्त्र है, ये कान का विषय है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी कान के द्वारा होता है। कान न हो, श्रवण इंद्रिय न हो, तो आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान होना संभव नहीं है। कानों ने कहा सबसे महत्वपूर्ण तो हम हैं, हमारे बिना जीवन ही संभव नहीं। नासिका ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, और बात भी सही है। ये सारी चीजें जीवन रक्षा के लिए, इस नाक का उपयोग केवल श्वास लेने में नहीं है, ये जीवन रक्षा के लिए। आप जब भोजन करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है इसमें सुगंध है, इसमें दुर्गंध है, और जब दुर्गंध होगी तो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होगा भोजन। आप किसी गंदे जगह पर बैठते हैं, नासिका आपको सूचना देती है ये जगह ठीक नहीं है बैठने की, ये दुर्गंधयुक्त जगह है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप बच जाते हैं। नाक ने कहा सबसे महत्वपूर्ण तो हम हैं, जीवन की रक्षा के साथ प्राण तत्व को जगह प्रदान करते हैं प्रवाहित होने के लिए। रसनेन्द्र ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम भोजन करते हैं, स्वाद लेते हैं, और ये जीवन की रक्षा होती है। पैरों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, हम धोते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, सुरक्षा करते हैं। हाथों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, बुद्धि ने कहा हम श्रेष्ठ, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था कि हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। प्राणों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के सामने जाके प्रार्थना की भगवान हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। कई बार बड़े आदमी को मुसीबत हो जाती है, आप घर के बड़े हैं, दो लड़ रहे हैं और दोनों कहते हैं बताइए किसकी गलती है, तो आप बहुत कठिनता में पड़ जाते हैं। छोटे का पक्ष ले कि बड़े का पक्ष ले? छोटे का पक्ष ले तो बड़ा नाराज, और बड़े का पक्ष ले तो छोटा नाराज। बड़े आदमी को बहुत बड़ी समस्या है, और ये ब्रह्मा जी के सामने तो और बड़ी समस्या है। लेकिन ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान है। ऐसे कई प्रसंग आते हैं ब्रह्मा जी के प्रसंग में। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि तुम श्रेष्ठ हो, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक युक्ति बता देता हूं और उस युक्ति पर तुम चलो और उसी से तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शरीर में एक एक करके इसको छोड़ते जाना, और जिसके छोड़ने से ये शरीर मरने लगे, ये शरीर अमंगल होने लगे, समझना वही श्रेष्ठ है। आंखें शरीर छोड़े और शरीर छोड़ने के बाद ये शरीर मरने लगे, समझना वो श्रेष्ठ है। कान शरीर छोड़े, इंद्रियां एक एक करके शरीर छोड़ते जाए, बहुत अच्छी बात लगी सबको, बहुत अच्छी बात लगी, युक्ति तो बहुत अच्छी बताई, किसी का पक्ष नहीं लिया। एक एक करके सबने इस शरीर को छोड़ा और देखा इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आंखें चली गई लेकिन आंखों के बिना भी ये शरीर बना रहा, अंधा होकर आदमी जीता है। फिर वापस आ गई, कान चले गए, बहरा होकर भी ये शरीर जीवित रहा, फिर कान वापस आ गए। मालूम हुआ कि कान और आंखें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जीवन जीने के लिए, वाणी भी चली गई लेकिन वाणी जाने के बाद भी आदमी मुंह का बनकर जीवित रहा, ये शरीर जीवित रहा। हाथ चले गए, पैर चले गए, उसके बाद भी शरीर जीवित रहा। पंगु होके भी आदमी, लूला होके भी आदमी जीवित रहता है, ये शरीर जीवित रहता है। बुद्धि भी चली गई, बुद्धि जाने के बाद आदमी कोमा में चला जाता है कि नहीं, जीवित तो रहता है, शरीर तो जीवित रहता है। सारी इंद्रियां जाके वापस आ गई लेकिन इस शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में ये जैसे प्राण इस शरीर को छोड़ने लगे वैसे ये शरीर मर गया, निस्तत्व हो गया, अमंगल होने लगा। और सबने एक स्वर से कहा कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है प्राण तत्व। ये प्राण जो है ना जीवन शक्ति है, प्राण के बिना जीवन का होना ही संभव नहीं, इसलिए जीवु प्राण धारणे धातु से जीव शब्द बनता है। ये जीव शब्द ही बनता है, प्राण धारणे धातु है, जीव का अर्थ है प्राणों को धारण करने वाला। यहां जीव का अर्थ इंद्रियों को धारण करने वाला नहीं है, जीव माने जो प्राणों को धारण करता है, क्योंकि प्राणों के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि इसकी श्वास चल रही कि नहीं, सबसे पहले। और ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे इन शरीरों में, शरीर में अनेकों इंद्रियां हैं और ये सारी इंद्रियां विश्राम को प्राप्त करती हैं। आंख को भी विश्राम चाहिए, कान को भी विश्राम चाहिए। आदमी सोचता भैया बहुत हो गया, अब सुनना बहुत हो गया। आंखों को भी विश्राम चाहिए, पैरों को विश्राम चाहिए, हाथों को विश्राम चाहिए, आपके बुद्धि को भी विश्राम चाहिए, आपकी बुद्धि भी विश्राम चाहती है। आपने बहुत ज्यादा विचार किया, बहुत ज्यादा विचार किया और उस समय आप आराम करना चाहते, विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन आपके प्राणों को कभी विश्राम चाहिए क्या? आज तक आपके जीवन में सारी इंद्रियां सोई हैं, सारी इंद्रियां सोई आराम की, हाथ पैर नाक कान सारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन केवल एक चीज बची रहती है और वो बहुत सजगता से, और वो चीजें आपके प्राण। मेरे को लगता है पैदा होने से लेके अभी तक कभी एक दो घंटे के लिए प्राण आपके चले गए थे क्या? हाँ, मेरे को नहीं लगता है। क्या प्रकृति है, पैदा हुए से लेके अभी तक दो चार मिनट के लिए भी प्राण मशीन बंद पड़ गई हो, फिर थोड़ा हिलाया डुलाया चालू हो गया, ऐसा है? आपका मोबाइल बंद पड़ गया, दो चार थप्पड़ मारते तो ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है। हमारे कमरे में एसी वृंदावन में लगी है, कभी बंद पड़ जाती है तो हमारा एक महात्मा है सुरेंद्र मुनि जी, वो आके दो चार थप्पड़ मार देता है, वो ठीक हो जाती। हम भी आश्चर्यचकित हो जाते, हम बहुत मारे, हमारे मारने से ठीक नहीं होती, लेकिन वो आके दो हिला देते तो ठीक हो जाते। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ क्या कि भैया शरीर ये थोड़ा सा चला गया, प्राण चले गए, आप मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े, हिलाया डुलाया फिर प्राण आ गए? कभी नहीं होता है, निरंतरता है, प्राणों की निरंतरता। इसीलिए जीवु प्राण धारणे धातु से ये जीव शब्द बनता है, मैंने निरंतर जो प्राणों को धारण करने वाला वही जीव है। प्राणों के बिना जीवत्व की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, प्राणों के बिना इंद्रियों का काम करना भी संभव नहीं है। यही प्राण हमारे इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं। ये भोजन क्या है? इसलिए प्राण को ब्रह्म तत्व के रूप में उपासना के लिए शास्त्र ने विधान किया, प्राणो ब्रह्म इति उपासित, कि प्राण ब्रह्म है। आप लोग जो भोजन देते हैं कि नहीं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित है। भगवान ने कहा कि मैं खाए हुए पिए हुए अन्न को पचाता हूं, जठराग्नि के रूप में मैं प्राण शक्ति हूं। ये प्राण शक्ति जो है ना, ये परमात्मा का रूप है, प्राण शक्ति परमात्मा का रूप है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं प्राण हूं, मैं प्राण हूं, और वो इंद्रियों को शक्ति देते हैं। प्राण तत्व संपूर्ण जीवन का आधार प्राण है, और प्राणों का भी आधार आत्म तत्व है। या प्राणेन संभवति आदितिर देवतामयी, जो प्राण संपूर्ण इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं। यहां आदिति देवता मैंने में सारी इंद्रियां हैं, ये संपूर्ण इंद्रियां जो है ना, प्रत्येक इंद्रियों में देवता का वास है, और इसीलिए यहां देवतामयी आदितिमयी ऐसा बोला। ये सारी इंद्रियों का बोधन है यहां, ये हमारी सारी इंद्रियां देवतामयी हैं, हमारी इंद्रियों में देवताओं का वास है, और जिनको चलाने वाले प्राण तत्व हैं, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ती, और वही आत्मसत्ता परमेश्वर की सत्ता हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करती हैं। बोले वही आत्म तत्व है। भगवान ने भी बोला है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने कहा सबके भीतर हूं मैं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। परमात्मा ने शरीर बनाया और स्वयं जीव बनकर इस शरीर में प्रविष्ट हो गए, और जो अहम अहम जो प्रतीति है, इस प्रतीति का विषय वही परमात्मा है, जिन्होंने प्रवेश किया इस शरीर में आत्म रूप में, जीव रूप में, और उसका जो केंद्र है ना वो हृदय है। इसलिए बार बार आपको इशारा किया जाता है, गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्ति। अनेकों जगह पर श्रुतियों ने इस बात का उल्लेख किया है, गुहाम प्रविश, ये कौन सी गुहा? ये बहुत सारपूर्ण बात कही है। अक्सर जो भी साधक होते हैं उनके मन में ये बात आती है कि हम किसी गुफा में बैठे साधना करें एकांत में। ये जो गुहा है ना, पुराने जमाने में साधु महात्मा किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे। जब भी कोई साधु महात्मा की बात आती है तो आपको गुफा जरूर याद आती है। बहुत विशाल जंगलों में, गिरी कंदर पहाड़ों के बीच में जो गुफाएं हुआ करती, उसमें जाके साधक लोग भजन करते थे, क्योंकि बोल रहे गुहा है हम प्रवेश, क्योंकि गुहा में परमात्मा होती है, आत्मा तो गुहा में होता है, और इसीलिए तो खोजते थे आप। आपको मालूम है कि गुफा में भगवान होते हैं, वही गुफा में छिपा हुआ है, तो आप कहां खोजोगे? फिर जाओ गुफा में बैठो। यहां गुफा का अर्थ है एकांत, गुफा का अर्थ है एकांत, और एकांत का अर्थ है जहां इंद्रियों की विषय नहीं है। इंद्रियों की विषय इंद्रियों को जगा देते हैं, और ये इंद्रियां जो है ना हमारे भीतर की वासना जगा देती हैं, और यही तो उपद्रव है। और आप गुफा में निस्तब्धता, आपने किसी बहुत गहरी गुफा में प्रवेश किया होगा कभी, वहां कोई शब्द नहीं होता है, बाहर का शब्द नहीं आता है, वहां कोई रूप नहीं होता है, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, बाहर के कोई उपद्रव नहीं, पूर्ण एकांत है। गुफा माने पूर्ण एकांत, और उस पूर्ण एकांत में वो परमात्मा निवास करते हैं। यहां गुफा शब्द का अर्थ ये मत समझना कि किसी गुफा में, गुफा माने पूर्ण एकांत, मन के पूर्ण एकांत में उस परमात्मा की अनुभूति होती है, इसलिए बोला गया कि वो गुफा में रहते हैं। और यहां पर गुफा शब्द का अर्थ हृदय रूपी गुफा भी बोला है, बाहर की गुफा नहीं, भीतर की बुद्धि रूपी गुफा में आपको परमात्मा कभी भी मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? गुहाम प्रविश्य, हमारे बुद्धि रूपी गुफा में। अब आप बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करो, अब आप ये मत सोचना कि बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करने का अर्थ सचमुच वो बुद्धि रूपी गुफा होगी और उसके अंदर आप प्रवेश करेंगे। यहां बुद्धि रूपी गुफा का अर्थ है जब भी आपको परमात्मा आत्मा मालूम पड़ेंगे, आपको बुद्धि से ही मालूम पड़ेंगे। दृश्यते वो देखा जाता है, बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, आपको बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा मालूम पड़ते हैं। लेकिन कौन सी बुद्धि? सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मया बहुत सूक्ष्म, और उस सूक्ष्म परमात्मा को दिखाने वाली बुद्धि। ज्ञान में तो मालूम पड़ती है ना बात, आपको कोई भी चीज मालूम पड़ती है वो अज्ञान में मालूम पड़ती है कि ज्ञान में मालूम पड़ती है? अंधकार में मालूम पड़ती है कि प्रकाश में मालूम पड़ती है? अंधकार में मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि अंधकार उसको ढक देता है, छिपा देता है, और प्रकाश उस वस्तु को प्रकट कर देता है। अज्ञान में वस्तु मालूम नहीं पड़ती है, यही तो अज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान में वस्तु मालूम पड़ती है। तो आत्मा को मालूम पड़ने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? आपके पास ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान में परमात्मा मालूम नहीं पड़ते हैं। आपने डॉक्टरी की है, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने वकालत की है, दुनिया के बहुत सारे ज्ञान है, आजकल ज्ञान की कमी है क्या? बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन उस ज्ञान में आपको मालूम क्या पड़ेगा? आपको वही मालूम पड़ेगा जिस विषय ज्ञान होता है, उस ज्ञान में वो विषय मालूम पड़ता है, दूसरा मालूम नहीं पड़ता है। घट के ज्ञान में पट मालूम नहीं पड़ता है, घट के ज्ञान में घट ही मालूम पड़ता है, पट मालूम नहीं पड़ता है। मनुष्य के ज्ञान में मनुष्य मालूम पड़ता है, पशु मालूम नहीं पड़ता है। देवताओं के ज्ञान में देवता मालूम पड़ते हैं, मनुष्य मालूम नहीं पड़ते। जिसका ज्ञान होता है उस ज्ञान में वही वस्तु मालूम पड़ती है, दूसरी मालूम नहीं पड़ती है। तो आत्मज्ञान में आत्मा मालूम पड़ती है, शरीर ज्ञान में शरीर मालूम पड़ता है, शब्द ज्ञान में शब्द मालूम पड़ते हैं, पुस्तकीय ज्ञान में पुस्तक मालूम पड़ता है। इसलिए यहां जो बुद्धि है ना, ये आत्म विषयिनी बुद्धि। आप बोलते हैं कि बुद्धि, बुद्धि माने यहां आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि, ब्रह्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आत्मा को सुनो, सुनने के बाद वो सुनी हुई चीज को मन के स्थल पर ले जाना है, मनन करो। ये मनन जो है ना मन के स्थल पर, और उसके बाद फिर मन का भी क्या भरोसा, संकल्प विकल्पात्मक मन, आप विचार कर रहे हैं, और यदि विचार कर रहे हैं तो अभी स्थिर भाव नहीं है। आपको कोई बोलता है ना कि भैया वो बात हुई कि नहीं, बोले विचार कर रहे हैं, माने विचार कर रहे हैं, विचार के स्थल पर हैं, विचार के स्थल पर यदि हैं तो अभी निश्चय नहीं है, वो मन है। अभी स्थिति डावाडोल है, हमने सुना तो आत्मा के बारे में, अभी हम सोच रहे हैं वास्तविक क्या चीज है। ये मन के स्थल का सत्संग है। और उसके बाद निधिध्यासितव्य, हमने अब निश्चय कर लिया है, अब वो मन के स्थल पर नहीं आया, वो बुद्धि के स्थल पर गया, निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चित हो गया। अब ये तत्व, ये आत्म तत्व है, निश्चित हो गया हम आत्मा है, अब ये निश्चित हो गया, अब इस पर कोई संदेह नहीं है, ये निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो गई। और उसके बाद फिर आत्मा वाले द्रष्टव्य, आपने देखा, आत्मज्ञान हो गया आप, अब उस आत्मज्ञान में आपको आत्मा मालूम पड़ेगी। इसलिए ध्यान देना, श्रवण मनन और ये निधिध्यासन है ना, इन तीनों में, न श्रवण में आपके श्रवण का विषय आत्मा है, न मनन का विषय आत्मा है, आपका जो आत्मा विषय है ना वो आपके निधिध्यासन का विषय है। और वो निधिध्यासन की भी चरम अवस्था जो निश्चयात्मक बोध हो गया, और उस बोध का जो विषय है वो आत्मा है। और जब आत्मज्ञान होगा तो आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान मिटेगा, वासना मिटेगी, सारी चीजें आपके अंदर की कमियां दूर होगी, और उसके बाद ततो न विजुगुप्सते। इसलिए गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति जो बोला है, वो गुहा माने आत्मज्ञान, गुहा माने आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, उसी ब्रह्मनिष्ठा में ब्रह्म तत्व निवास करता है, माने उसका अनुभव होता है। और एक बार अनुभव हो जाता है तो ज्ञानी फिर ततो न विजुगुप्सते। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्।